नंदिनी को अपने नज़दीक आकर बैठते हुए उदय ने देखा। उसने अपना एक हाथ नंदिनी के हाथ पर रखा और दूसरे हाथ से स्टीयरिंग संभालते हुए कार सीधे आइसक्रीम पार्लर के सामने जाकर रोकी। उसने कार रोकते ही नंदिनी से कहा, आप यहीं बैठिए, हम बस अभी हम दोनों के लिए आइसक्रीम लेकर आते हैं। नंदिनी ने सिर हिलाकर हामी भरी। उदय ने कार का गेट खोला और आइसक्रीम लेने के लिए आइसक्रीम पार्लर की ओर बढ़ गया। इधर इप्सिता वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकली थी। उसने अपने गीले बालों पर तौलिया लपेटा हुआ था। कमरे में आकर उसने अपने लंबे काले सिल्की बाल खोले और उन्हें पोंछ ही रही थी कि तभी उसका फोन बजा। इप्सिता ने मोबाइल फोन के पास आकर कहा, ये किसका नंबर है? इप्सिता कॉल उठाने के लिए नीचे झुकी और मोबाइल फोन उठाया। वो कॉल पिक करने ही वाली थी कि कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। इप्सिता ने स्क्रीन की ओर देखते हुए कहा, अननोन नंबर से हमें इस वक्त भला कौन कॉल कर सकता है? क्या करें, कॉल बैक करूं या नहीं? इप्सिता काफी कंफ्यूज लग रही थी। तभी उसने मोबाइल फोन उठाकर देखा तो इस अननोन नंबर से उसे दो बार पहले भी कॉल आ चुकी थी, लेकिन तब वो वॉशरूम में थी और शावर ऑन था, इसलिए उसे रिंग सुनाई नहीं दी थी और वो कॉल पिकअप नहीं कर पाई थी। इप्सिता ने उस नंबर की ओर देखते हुए कहा, आज से पहले तो कभी भी इस नंबर से हमें कॉल नहीं आया, तो फिर आज भला कौन इस तरह अननोन नंबर से हमें कॉल कर सकता है, वो भी शाम के इस वक्त? इप्सिता के दिमाग में ये बात चल ही रही थी कि फिर से उसी नंबर से कॉल आया और उसका मोबाइल फोन फिर से रिंग होने लगा। इप्सिता ने अपने मोबाइल स्क्रीन को फ्लैश होते हुए देखकर खुद से कहा, क्या करूं, ये कॉल पिकअप करूं या नहीं? क्या इस कॉल को पिकअप करना ठीक होगा? इप्सिता ये सोचकर कॉल पिकअप करने जा ही रही थी कि उसने फोन साइड में रखते हुए कहा, हम अननोन नंबर से कॉल पिकअप नहीं करेंगे। नंदिनी वैसे भी बोलती है कि ज्यादातर अननोन नंबर स्कैम वाले होते हैं। इतना बोलकर इप्सिता फोन रखने जा ही रही थी कि उसने खुद से ही धीमी आवाज में कहा, अगर किसी इम्पॉर्टेंट आदमी का कॉल हुआ तो, या हो सकता है किसी दूसरी कंपनी से हमें मॉडलिंग का कोई ऑफर मिल रहा हो, वर्क रिलेटेड कॉल भी हो सकता है, हम इसे इस तरह इग्नोर नहीं कर सकते, हमें ये कॉल पिकअप करनी चाहिए। इतना बोलकर इप्सिता ने उस कॉल को पिकअप कर लिया और कॉल पिकअप करते ही जैसे ही इप्सिता ने हेलो बोला तो दूसरी तरफ से किसी की कोई आवाज नहीं आई। इप्सिता ने फोन के नंबर की तरफ देखा। उसने दोबारा कहा, हेलो, आपको किससे बात करनी है? हेलो, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? इप्सिता की आवाज सुनकर फोन के दूसरी तरफ से एक बड़ी ही भारी और जानी पहचानी आवाज आई, इप्सिता प्लीज हमारी बात सुनिए, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। इप्सिता ने जैसे ही ये बात सुनी तो समझ गई कि ये कोई और नहीं बल्कि अभिमन्यु है। इप्सिता ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और वहीं बेड पर ठहर सी गई। उसके दिमाग में जो इतने सारे सवाल चल रहे थे वे सब सवाल एक बार में ही बिल्कुल साइड हो गए। इप्सिता ने अपने मन में कहा, मैं कैसे भूल सकती हूँ अभिमन्यु को, आज ही तो उनसे मिली थी, मैंने क्यों नहीं सोचा कि उनका भी तो फोन आ सकता है। वैसे भी अब क्यों कॉल कर रहे हैं अभिमन्यु, मुझे नहीं बात करनी उनसे, कोई बात नहीं करनी, और वैसे भी बात करने को बचा ही क्या है हमारे बीच। इप्सिता इतना सोच ही रही थी कि दूसरी तरफ से दोबारा अभिमन्यु की आवाज आई, इप्सिता आप सुन रही हैं ना हमारी बात, हेलो, कहीं कॉल डिस्कनेक्ट तो नहीं कर दिया, कॉल तो अभी भी कंटिन्यू है। फोन कॉल पर अभिमन्यु की काफी परेशान होती हुई आवाज सुनकर इप्सिता ने कहा, देखिए आप, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, इसलिए प्लीज मुझे फोन करके आप मेरा टाइम वेस्ट मत करिए। अभिमन्यु ने इप्सिता को रोकते हुए कहा, इप्सिता प्लीज एक मिनट आप हमारी बात तो सुन लीजिए और प्लीज कॉल डिस्कनेक्ट मत करिएगा, आज बहुत हिम्मत करके मैं आपको कॉल लगा पाया हूँ और मैं मानता हूँ कि आपका नाराज होना जायज है और मैं ये भी जानता हूँ कि आप इस वक्त मुझसे काफी ज्यादा नाराज हैं, बट एक बार आप मेरी बात सुन तो लीजिए कि आखिर मैंने आपके साथ ऐसा क्यों किया। इप्सिता ने तुरंत ही उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, आपको जो करना था आप कर चुके हैं, तो फिर अब किस बात की सफाई देनी है आपको, मुझे नहीं सुननी आपकी कोई बात और मैं नहीं चाहती कोई भी सफाई आप मुझे दें, इसलिए मुझे परेशान करना बंद करिए, मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ और आप इस तरह फिर से वापस आकर अब दोबारा से मेरी लाइफ बर्बाद नहीं कर सकते। जैसे ही अभिमन्यु ने इप्सिता की यह बात सुनी उसे इप्सिता की आवाज में दर्द साफ महसूस हो रहा था। उसने इप्सिता की बात का जवाब देते हुए कहा, आई नो इप्सिता, मैं आपके गुनाहगार हूँ और मैंने आपके साथ जो किया वो बहुत गलत किया, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया गया था। आप इतना समझ लीजिए कि अगर मैं उस दिन आपको मंडप में अकेला छोड़कर ना जाता तो। अभिमन्यु अपनी बात बोलता ही जा रहा था तभी इप्सिता ने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं कह रही हूँ कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, आप बेवजह मुझे बार बार एक्सप्लेन देना बंद करिए, मैं आपकी किसी भी बात से कन्विंस नहीं होने वाली, आप मेरे लिए अब कोई मायने नहीं रखते, आपका मेरी लाइफ में आना भी मेरे लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए प्लीज फोन रखिए और दोबारा मुझे फोन मत करिएगा। इतना बोलकर रिप्शिता ने कॉल कट कर दिया और दूसरी साइड से उसे कुछ भी बोलने का मौका नहीं दिया। उसके मन में जो भी गुस्सा और इरिटेशन भरा हुआ था वे सब अभिमन्यु पर चिल्लाते हुए निकल गया। अभिमन्यु ने रिप्शिता को कॉल कट करते देखकर अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसने फोन की ओर देखते हुए कहा, रिप्शिता मैं जानता हूं आप बहुत नाराज हैं, लेकिन मैं भी आपको मना कर ही रहूंगा और मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला, आपको मेरी बात सुननी ही होगी। इतना बोलकर रिप्शिता का नंबर उसने फिर से डायल कर दिया। अभिमन्यु ने जैसे ही नंबर डायल किया, रिप्शिता ने अपने फोन की ओर देखा। उस नंबर को देखकर उसने भी कॉल को तुरंत कट कर दिया। रिप्शिता ने अपने फोन को साइड में रखा, फिर वो शीशे के सामने खड़ी हुई और उसने हेयर ड्रायर निकाला और अपने बालों को सुखाते हुए बोली, अभिमन्यु आपका इस तरह मुझे बार बार कॉल करना सिर्फ और सिर्फ परेशान करेगा, मैं अब और परेशान नहीं होना चाहती। इतना बोलकर उसने अपने बालों को ठीक से बनाया और तभी अभिमन्यु का फोन फिर से आ गया। रिप्शिता इरिटेट हुई और उसने कॉल पिकअप करते हुए गुस्से में चिल्लाया, अभिमन्यु मैंने आपसे कुछ कहा, आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती, आप इस तरह से अपनी मनमानी कैसे कर सकते हैं, क्यों आप बार बार फोन करके मुझे परेशान कर रहे हैं, अभिमन्यु ने बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करते हुए कहा। रिप्शिता आपको मेरी कसम, प्लीज दो मिनट, बस दो मिनट शांति से मेरी बात सुन लीजिए, एक बार अगर आपने मेरी बात सुन ली तो मैं जानता हूँ आप मुझे माफ कर देंगी, रिप्शिता ने तुरंत अभिमन्यु की बात पर रोकते हुए कहा। बहुत बड़ी गलतफहमी में है आप, क्योंकि मैं आपकी कोई भी बात सुनकर आपको माफ नहीं करने वाली, और मेरे लिए आपको माफ करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है और ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट भी नहीं है, सो प्लीज, अभिमन्यु रिप्शिता की बात सुनकर बोला, ठीक है आप मुझे मत माफ करिएगा, मैं आपसे कोई माफी नहीं मांगूंगा, बट एक बार आप मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं नहीं चाहता कि आपके दिमाग में मुझे लेकर कोई गलतफहमी हो, रिप्शिता ने अभिमन्यु से कहा। सबसे पहली बात तो मेरे दिमाग में कोई भी गलतफहमी नहीं बैठी है, किसी की सुनी सुनाई बातों से गलतफहमी नहीं पाल रही, बल्कि आपने मेरे साथ जो किया मैं उस बात को सोचकर कह रही हूँ, बट ठीक है जैसा आपने कहा, सिर्फ दो मिनट है आपके पास, बोलिए क्या बोलना है आपको। रिप्शिता ने जैसे ही अभिमन्यु को दो मिनट का वक्त दिया,
अभिमन्यु ने खुश होते हुए कहा, थैंक यू सो मच रिप्शिता मुझे समझने के लिए, और ये जो दो मिनट है मेरे पास वही मेरे लिए काफी है आपको अपनी बात समझाने के लिए। रिप्शिता अभिमन्यु की बात सुनकर आंखें घुमाते हुए बोली, जिसमें से 15 सेकंड्स आप गंवा चुके हैं। इतना बोलकर रिप्शिता चुप हो गई। अभिमन्यु ने रिप्शिता की बात सुनकर थोड़ा शौक होते हुए कहा, आप यही सोच रही हैं ना कि उस दिन मैंने आपसे शादी करने के लिए इसलिए मना किया क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता था, उसे भूल नहीं पाया इसलिए आपसे शादी नहीं की, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। रिप्शिता अभिमन्यु की बात चुपचाप सुन रही थी। अभिमन्यु ने आगे पूरी बात बताते हुए कहा, लेकिन असल बात ये नहीं थी, सच बताऊं तो मैंने उस दिन ये कदम बहुत सोच समझकर उठाया था और मैं आपके सारे मैसेज को देख रहा था, लेकिन मैं जानबूझकर उन सारे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा था, क्योंकि अगर मैं आपको रिप्लाई करता तो शायद फिर मैं आपको इस तरह मंडप में छोड़कर ना जा पाता, जो कि उस वक्त बहुत ज़रूरी था। रिप्शिता अभिमन्यु की बात सुनकर बोली, क्यों नहीं जाते आप फिर भी चले गए, क्योंकि आखिर में आप गए तो मुझे अकेला छोड़कर वहाँ पर सबके सामने, मुझे पता है मैं आपके लिए उतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी और ना ही मेरे इमोशंस और फीलिंग्स, लेकिन आपने मेरी मेरे घर वालों की रिस्पेक्ट के बारे में भी नहीं सोचा, आप जानते हैं कि एक रॉयल फैमिली की लड़की के साथ अगर ऐसा हो तो उसके लिए कितनी बेइज्जती की बात होगी, लेकिन आपने उस टाइम कुछ भी नहीं सोचा, बल्कि जो आपके मन में आया आपने वो किया, यहाँ तक आपने तो अपने घर वालों की भी इज्जत के बारे में नहीं सोचा, तो फिर अब आपको इतनी सफाई देने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, वो भी 6 महीनों बाद अचानक से, अब तक कहाँ थे आप, ज़रूर कोई अच्छा बहाना सोच रहे होंगे। अभिमन्यु ने रिप्शिता की बात पर एक ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा, मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप मुझे जितना बुरा इंसान समझ रही हैं मैं इतना बुरा नहीं हूँ, वैसे भी ये मत भूलिए रिप्शिता कि आपके घर वालों की बेइज्जती के साथ साथ मेरे घर वालों की भी बेइज्जती हुई है, आप नहीं जानती कि उसके बाद क्या क्या हुआ और उस वक्त भी क्या क्या चल रहा था वहाँ पर। अभिमन्यु बोल ही रहा था कि तभी रिप्शिता ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, हाँ मैं नहीं जानती कुछ और मुझे जानना भी नहीं है, आपके 2 मिनट खत्म हो चुके हैं इसलिए मैं कॉल डिस्कनेक्ट कर रही हूँ, आई स्वेयर अभिमन्यु अगर आपने अब दोबारा मुझे कॉल किया तो मैं आपका ये नंबर ब्लॉक कर दूंगी और अपना फ़ोन भी स्विच ऑफ कर दूंगी। इतना बोलकर रिप्शिता ने कॉल कट कर दिया। अभिमन्यु फ़ोन की दूसरी तरफ से बोलता रह गया, रिप्शिता एक मिनट मेरी पूरी बात तो सुनिए, लेकिन रिप्शिता ने उसकी बात नहीं सुनी और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया।